نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے, غلط سے مراد کہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کوئی انسان کوئی حرکت کرتا ہے جس کو ہم جرم کہتے ہیں, اور ایسے کام کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے عدالتی زبان میں, تو جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے دنیا کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے. کسی بھی عدالت میں چلے جائے, چھوٹی بڑی کوئی بھی عدالت ہو, مجسٹریٹ ہو, جج ہو, ہائی جج ہو, جب وہ مجرم پیش ہوگا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہے تو مجرم کہے جی چھوڑ دو, چھوڑ جائے گا؟ نہیں, جرم اس کا ثابت ہو چکا ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. تو دنیا کے قانون یہی ہے کہ آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ آدمی ثابت بھی ہو جائے اس کا چھوڑ دو, چل بھائی چلا جا, بس چھوڑ دو مجھے. کیا ہوتا ہے, اس کو سزا دی جاتی, جیسا اس نے جرم کیا تھا ویسی سزا ملتی ہے اس کو. سزا کی نوعیت پر جو ہے قانون بنائے گئے ہیں کہ اس کو اتنی سزا دی جائے, کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو پھانسی دی جائے, یا جو کچھ بھی ہے عدالتی زبان کے اندر, کسی نے چوری کیا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے, جس نے کوئی برا کام کیا ہے اس کو ایسی سزا دی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے اپنے قانون بنائے ہیں معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے, اس سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ آدمی ڈرتا ہے جرم ہو گیا تو مجھے سزا تو ملے گی. اگر مجرم کو یہ پتا ہو سزا نہیں ملنی تو پھر تو کرے گا, وہ ہر گناہ کرے, ہر مطلب قانون کو توڑے گا اور اس نے وہ کام کرتے رہنا. لینسی نہیں ہو سکتی اس میں, اس میں چھوٹ نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے نا بھائی قانون, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی وکیل تو نہیں ہوں, مطلب ایک سادی سی بات کروں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے بات, کہ بھائی ہے قانون ہے. ثابت یہ ہوا کہ ہر مجرم جرم کرنے والا اس دنیا کے اندر سزا پاتا ہے, دنیا کی کورٹس میں اس کو سزا دی جاتی ہے, جیل میں جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے, جیل تک جائے گا اور مار تو نہیں سکتے اس کو. ایک جرم ہوتا ہے مجرم جو اللہ کی عدالت کا مجرم ہوتا ہے, اس نے کس کا جرم کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کا جرم کیا ہوتا ہے, فرق ہے دونوں میں. تو اس کی بھی قانون ہے, یہ نہیں ہوں گے, اللہ کو تو مانتے ہیں ہم سب, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا جو وہ جرم کرے گا تو اس کی سزا نہیں ہوگی. آپ کی عدالت تو فوراً سزا دے دیتی ہے, تو اللہ کا جرم جو کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کے جو قانون کو توڑتا ہے, اللہ کی بتائی باتوں کو توڑتا ہے, اللہ نے قانون بنایا اس نے اس کو توڑا, تو پھر اللہ قانون کیا کہے گا؟ اس کو سزا دیجیے. اس کی سزا تو یہ ہے, دنیا والی سزا کیا ہے؟ لاک اپ کر دو, جیل کر دو, پھر روٹی کھائے گا, پانی ملے گا, ماشاء اللہ پوری سہولتیں ہیں اندر, لوگ کہتے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ جو اللہ کا مجرم ہوگا, اللہ اکبر, پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں، اس کے لیے خاص جگہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہنم کہا جاتا ہے. اور اس جہنم کی جو نوعیت ہے وہ تو بہت سخت ہے. اللہ نے جو اس کی ڈسکرپشن بیان کیے ہیں، جو احادیث کے اندر جو اس کے بیان کیے گئے ہیں، کن کے لیے؟ دیکھو تم میرے مجرم بنو گے. جیسے یہ دنیا کی کورٹ بتاتے ہیں کہ بھائی جس نے یہ کام کیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، اتنے سال اندر کیا جائے گا، اتنی پنلٹی جائے گی، اس جگہ آپ نے گاڑی پارک کی تو آپ کو 40 پاؤنڈ لگیں گے، نوعیت بتائی جاتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص، مجھے بتاؤ کس قدر خطرے میں ہوگا. آج نہیں کل تو جائے گا اللہ کے سامنے، کورٹ تو لگنی لگنی، اللہ کی عدالت تو لگنی لگنی. تو اگر ہم یہاں اتنے احتیاط کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی جاتا ہے کسی بڑے اسٹور میں اور اس کا دل کرتا ہے یار ٹیلی فون تو یہ بہت اچھا ہے، چلو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو یار جی میں ڈال لیتے ہیں، 400 پاؤنڈ تو ہے نہیں لیکن ٹیلی فون بڑا پسند آیا مجھے، اب وہ جی میں ڈال لیتا. لیکن کیا چیز اس کو روکے گی؟ اللہ تو بعد میں روکے گا، پہلے کیا چیز روکتی اس کو؟ کہ یار اگر یہاں کیمرہ لگا ہوا، اگر یہاں کوئی سنتری کھڑا ہوا، کوئی چوکیدار کھڑا ہوا، کوئی گارڈ کھڑا ہوا، اگر اس نے وہ دیکھ لیا تو اب اس کے پسینے چھوٹیں گے، پسند آ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے لے لے، ڈال لے جیب میں، اور روک کیا رہا ہے اس کو؟ خوف، پکڑا جاؤں گا یا چھوؤں گا. اور جو اس خوف کو توڑ کے کام کر جاتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ دنیا کے مجرم بن جاتے ہیں. پکڑا گیا تو کدھر گیا؟ جی. اور جب اللہ کا انسان قانون توڑ رہا ہوتا ہے، مقابلہ کرے تو کوئی اور مرد اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کی ہوتی ہے، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف احادیث میں بیان کیا ہے بلکہ اپنے پیارے نبی محبوب کو آسمانوں پر بلا کر وہ چیزیں دکھا بھی دی ہیں، آنکھوں سے دکھا دی گئیں، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہوگا، یہ فلاں شخص ہوگا، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں عورت ہے، فلاں مرد ہے، فلاں مرد ہے، ڈسکرائب کر دیا یعنی اس قدر کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا، مجھے میرے رب نے مجھے چیز دکھائی ہے وہ چیز. اور جب وہ انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں وہ مجرم ہوں، کہ اس جرم کی سزا ایسی ہے کہ جیل نہیں ہوگی، اور جج تو شاید تھوڑا بہت حساب کتاب یہ کر جائے کہ بھائی اس کو سمجھ نہ پائے وہ کیس، اور کیس میں اس میں جھول مار جائے تو سزا کم ہو جائے، ممکن ہے. دنیا کا قانون، میرے رب کے تو قانون ایسے ہیں کہ اس نے 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی خبیر و بصیر ہے، فرشتے اس نے ویسے ہی رکھ دیے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، بیکپت جانتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں فرشتوں کے قانون کی، وہ تو اس نے ویسے ہی رکھ دیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے. میرے رب کا قانون تو جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، وہ تو اس کو محتاج نہیں کسی چیز کا، کوئی فرشتہ اس کو بتائے، وہ تو زمین کو بلوا دے گا، وہ تو خود اس کے وجود سے بلوا دے گا، انگلی سے بلوا دے گا، ناخن بتا دے گا، بال بتا دے گا، بھموں کے بال بتا دیں گے، ڈاڑی کے بال بتا دے گا، یہ سب بیگانے ہو جائیں گے، تو اس کو تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو جس کے پاس اتنا بڑا ریکارڈ موجود ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کا مجرم انسان بن رہا ہو اس قانون کو توڑ کر، تو کوئی بچت نظر آتی ہے اس دربار میں؟ جس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ کسی عام جیل میں نہیں، اللہ اکبر، جہنم کے گھروں کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. کرنا چاہیے جرم، سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ میں اپنے آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بھائی دنیا کے معاملے قانون توڑتے ہم ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، بری بات ہے، اس لیے قانون بنائے گئے، قانون کی پاسداری کرے آدمی، جس ملک میں ہے اس ملک کے قانون کی پاسداری کرے، اس قانون کے مطابق چلے، جس ملک میں ہے ہم نے ایکسیپٹ کیا اس قانون کو ایکسیپٹ کرو، بالکل صحیح. تو جس اللہ پاک نے انسان کو بنا کے پوری دنیا کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا، اور اس قانون کو پھیلانے کے لیے ایک نہ ایک 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیجا گیا، اور ہم نبی کے کام یہ سپرد کیا گیا کہ میرے قانون کو بتاؤ، اس لیے کہ ہماری حفاظت کے لیے نبی آئے کہ یہ غلط کام نہ کریں، ان کی بہت سخت سزا تمہیں ملنی ہے، ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے، ہم تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، کہتے ہیں نا بشیر اور کیا ہے نذیر ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم ڈر جاؤ، وہاں بچ نہیں سکو گے، वहां बच नहीं सकोगे इन गुनाहों से। जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है उस पर स्टिक हो जाओ, पाबंद हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस खौफ को, इस चीज को समझ जाते हैं, ये कुरान जो हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए पढ़ते हैं, ये चीज हम वहां से सीखें और हमें वहां से खौफ पैदा हो। ये तोते की तरह रट मारने वाला नहीं है, या कोई ये वो मसले मसायल करने वाला नहीं है, ये नुकता निकाल लिया वो हो गया तो जी तफसीर फला, ये नहीं, ये बेसिक पैगाम है कुरान का। कि कुरान इसलिए दिया है कि सच्ची को अल्लाह ताला इस गुनाह की क्या सजा देगा, इस गुनाह की क्या सजा है, ये मुजरिम कैसा होगा, इसको कहां फेंका जाएगा, वो सारा कुरान बताता है। तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को समझ जाते हैं, सारी जिंदगी अपने नफ्स से फाइट करते हैं। जिस तरह वो आदमी जिसके दिल में शौक पैदा हो कि मैं टेलीफोन ले लूं या जेब में डालूं, और उसको पसीना आ रहा है लूं या ना लूं, ख्वाहिश कहती ले ले और कानून कहता है मत ले, अब उस तजब्जब के अंदर है कि मैं लूं या ना लूं, कितनी देर लगती है। तो जरूर हमें ये सोचना चाहिए, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी इंसान कर रहा हो तो सोच लेनी चाहिए कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसकी सजा जो है बहुत जल्द मिलने वाली है, और उस दरबार में खड़ा होगा, वहां कोई बचाने वाला, गवाहों की जरूरत ही नहीं होगी, एविडेंस की जरूरत ही नहीं होगी, मैं कोई लायर ला ही नहीं सकूंगा, बैरिस्टर कोई कर ही नहीं सकूंगा, हर चीज अल्लाह ने, तू खुद अपना बैरिस्टर है, तू खुद अपने जबान से कहेगा कि तूने गलत काम किया है, तो जिम को तकसीम करेगा। नहीं समझे मेरी बात, कितनी बड़ी बात है, करें आप सच्ची तो भाई, तो बड़ी बड़ी बात है। आप फर्क देखें, चीज जो बता रहा हूं जो मेरे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह सब वहां से गाड़ी से बैठते बैठते यहां तक आई, ये सारा मजमून अपने पर सोचता था, भाई मर गया तेरा हाल क्या होगा, तो जब ये सोचता हूँ आज सोच तू क्या होगा, जब सफर यहाँ कर तक किया तो ये बातें आ गई, मैंने आप फटाफट ताजी बता दी, ताजी बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह सल्लल्लाहु बैठो, बिल्कुल ताजी बात, सफर ये जो किया 5 मिनट का, इसमें उमर बिन आस की हदीस बयान कर रहा हूँ आपके खिदमत में। अल्लाह दुआ के लिए खूबसूरत मजमे में जा रहा हूँ, बड़े प्यारे लोग बैठे होंगे, अल्लाह के जिक्र के लिए तुम्हें भेजे होंगे, तेरे महबूब बंदे होंगे वो, जो मस्जिद में तुमने जिनको जमा किया होगा, उनकी जूतियों को सदके मेरे भी को बना दे, मेरा हाल भी सही हो जाए, कि ऐसे मेरे सीने में डाल दे कि मैं वहाँ से अपने दुखड़े रहूँ तो मेरी भी कुछ जिंदगी बन जाए, और वो तो माशाल्लाह नेक आदमी, उनको तो दराजात बुलंद कर दे, तो किस तरीके से। तो अल्लाह पाक ने उम्र मिनास की हदीस में दिल में ये 5 मिनट में डाल दी, तो ये मैंने आपके सामने पूरा मजमून जो है जहन में बयान कर दिया, बड़ा अच्छा खूबसूरत मजमून, देखें सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा है ही नहीं, मेरी तैयारी नहीं, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, कुरबान जाऊँ सब के सीने के अंदर ये चीजें डाल दी, तेरा करम है ना मौला, वरना मुझे तो पता नहीं था क्या स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना प्यारा मजमून रहेगा, किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, किस तरह तजाद की अल्लाह पाक ने दोनों चीजों का, क्या अल्लाह के पास सलूम है, देखे कैसी हिकमतों के साथ इंसान के सीने को खोल देता है। खुदा की कसम ये बात सुनने के बाद आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान को कितना खौफ करना चाहिए जब इंसान का जुर्म कर रहा हूं इंसान, वल्लाह बिल्लाह से पहले मुझे एहसास नहीं था, मैं कसम खा कर ये कैसे अल्लाह पाक के करम इंसान पे हो जाते हैं कि ना कोई किताब, ना कोई हदीस, ना कोई कुरान, पर सीने के अंदर जो चीज डाल देता है वो पूरा मजमून बन जाता है, कुरान भी आ जाता है, हदीस उम्र बिन आस की हदीस भी आ गई जहन में, पूरी दलील के साथ अल्लाह पाक देता है। और अब मैं कर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टार्ट कर दूं काम, तो मुझे पता है आपने 3-4 घंटे बिठा के अल्हम्दुलिल्लाह दीवार कर सकता हूँ इस मजमून पर, अल्लाह कैसे खोल देता है सीने को इंसान की। अब आगे देखें जो खूबसूरत बात आप इसमें जो मैसेज लेंगे, आप कमाल दर्जे का मैसेज होगा। उमर बिन आस तवज्जा है ना, गौर से सुनते मेरी बात, तवज्जा देके बैठ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आ रहा है, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं मौलवी तकीर मत कर नहीं कर रहा आपके सामने, मैं तैयारी करके नहीं है, ये जुम्मे की तकीर नहीं या कोई मजमा नहीं, ये तो खालिस अल्लाह की तरफ से आई हुई बातें आ रही हैं। नहीं ये क्या, तो उससे पूछ जो मुझे लेके आया, मैं कहता मैंने बात नहीं करनी, तो जो यहाँ आया मैंने बात करनी, कहते अभी तो हमारा हम तैयारी नहीं किया है नहीं किया मैं कहा मैंने बात आई है, मैंने कहा जाकर जिक्र करेंगे, उसको बोला था, तो जब यहाँ मैं कहा माई शायक है किसी बात कुछ नहीं, जब आपने कहा तो कोई बात नहीं करनी, मैं कहा इस पर ना जाया करो, चीज रख दिया करो, हो ना हो अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता, ये देखें बैठा गया आपके साथ। अब जो असल मसा जिसमें मुर्बिनासने की जो हदीस है उस पर चले क्या, देखें फर्क, देखें दो जुर्म हमारे सामने पेश किए गए, एक दुनिया का और एक आखिरत का। छोटा सा भी जुर्म उसने किया होगा, एक आदमी ने पेंसिल चुराई होगी, एक टॉफी चुराई होगी, सजा मिलेगी, बच जाएगा। दुनिया काम छोड़ देगा, उसको कोई छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। साबित होगा चोरी की सजा मिलनी पड़नी मेरे रब को देखे। 70 साल तक जिसने गुनाह किए होंगे, नाफरमानी की होंगी, बदकारी की होंगी, अल्लाह ने इंतजाम फरमाया कि तू एक दफा इस्तगफार कर ले, मुझे माफ कर दूं।
सुभान अल्लाह,
कैसा प्रोसेस, कितने बड़ी जेल से बचेगा। आप यहां खड़े हो जाए जज के सामने, एक टॉफी आप कहें जी माफ कर दो, माफी का गुंजाइश नहीं है, पहले सजा बाद में माफी। आज के सुने आपने बड़ी बातों, जुर्मों की बात नहीं कर रहा कि वहां कह चलो आज तक माफ कर दो, आईंदा नहीं करूंगा, चलो चुप ठीक है माफ कर दिया, आंदा ना करना, कहीं ये कानून नहीं आएगा। हालांकि क्या दुनिया का कानून बना हुआ है, दुनिया की जेलें हैं, करना चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है, अंदाजा लगे। एक टॉफी चोरी की है, नहीं इसका सजा ये है, एक गाड़ी गलत पार की है, आप कितना लड़ते हैं वार्डन से, नहीं जी हमें पता नहीं तूने किया है, हैव टू पे इट, माफ कर देगा। आप उसकी मिन्नतें करें, रोएं पीटें कुछ करें, करेगा माफ? मेरा रब क्या कहता है कि तूने जना की, चोरी की, कत्ल की, बदमाशी की, नापाकियां की, इतने बड़े बड़े जुर्म किए कि आसमान जमीन भर गया तेरे जुर्म से, बस एक दफा कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझे जहन्नम से बचा। इससे आगे बात बताऊं आपको, जो असल बात मेरे जहन में आई जो अल्लाह ने मैसेज दी है, ये तो ये तमीद थी, ये क्या है इंट्रोडक्शन दिया अभी, अभी असल असल चीज की तरफ आ रहा हूं, जो असल मजमून है मेरा इस वक्त, जो अल्लाह ने जो असल मजमून दिया है मुरमिलास की हदीस, सुभान अल्लाह, मजा आया सब पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तस्वीर तेरी बात में पढ़ा तो फात है, यही मस्त हो गए। तो आगे सुने जरा, कहना ऐसे भी नहीं, मैं तो रहीम और करीम हूं, था अल्लाह की शान देखें कितना अपना बंदे से प्यार करता है। यानी एक आदमी जो जहन्नुम के गड़े में, एक सजा नहीं, सुबह से शाम तक हम कितनी सजाएं होती हैं हमारे जो, कितने जुर्म हमारे ऊपर होते हैं, जबान आंख हाथ पांव पेट दिल हर वक्त गुनाह के अंदर सरोकार होता है, होता ही नहीं होता। अपन देखें इतने बड़े मुजरिम हैं, लेकिन उसका तर्स खाना देखें, उसकी रहमत देखें, उसका कलम देखें, उसका फजल देखें, कि सारे जुर्मों के साथ जितने भी जुर्म किए हैं, कहता है तू एक दफा कह दे अल्लाह माफ, मैं तुझे माफ कर दूं, है ही नहीं कोई दोज़ख, खत्म किधर, सब खत्म, पता ही नहीं जुर्म किए थे। एक और सुनिए आगे बात, अल्लाह कहते इससे बात आगे चले, तो मैं तो बहुत रहम करने वाला हूं, अल्लाह कहते इतना रहम करने वाला हूं कि चल तू जो माफी मांगेगा मैं इससे बड़ा का इंतजाम किया है माफी का। वो क्या? अल्लाह कि मैं एक इंतजाम तेरे लिए ऐसे कर दिया कि अर्श हामीन अर्श तक पूरी फिजाओं और पूरे जितने भी आसमानों पर फरिश्ते हैं मैं उनको मशगूल कर दूंगा कि वो तेरी तरफ से इस्तगफार करे। हमारी चलो इस्तगफार इतनी कमजोर है, लेकिन फरमाया फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, तेरे लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा मैं कि वाकई तो तौबा करना चाहता है तो दुनिया के अंदर हो रहा है, अभी कर ले जो कुछ तू कर सकता है, लेकिन अगर फरिश्ते नजर आ गए और तेरा सफर जारी हो गया तो फिर कब सब किताब बंद हो जाएगी तेरी, ये याद रख, फिर जो बाद वाले तेरे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे तो किताब बंद हो जाएगी। सोचने तो आज सोच और अभी सोच इस बारे में कि मैंने तौबा करनी है। तो फरमाया मैंने तौबा तो ऐसे इंतजाम की है कि तू क्या तौबा करेगा, तेरी तरफ से फरिश्ते तौबा करने लगे, हामलीन अर्श तौबा करने लगे, जिब्रील और मीकाईल तौबा करने लगे, बड़े बड़े फरिश्ते जिनको हम जानते भी नहीं, मिलियन मिलियन फरिश्ते वो तेरी तरफ इस्तगफार करें। या अल्लाह वो कैसे होगा? और मैं होता है कि जब कोई बंदा मेरा जिक्र करता है तो जितने भी दुनिया आसमान पर फरिश्ते हैं सब उसकी तरफ से इस्तगफार करते हैं। क्या बात है, उम्र बिन आस की हदीस मैंने आपको बयान की है। तो अब बताएं कि ये किस तरह, उन्होंने बताया नबी के साथ फरमाते हैं कि जिसने कहा सुभान अल्लाह तो 100 मिलियन फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको माफ कर दे। ये क्यों? कि तुम्हारी गंदी जबान इस्तगफार कर रही है तो उस पर क्या शक, तो इसमें भी नहीं, अल्लाह इसमें गारंटी दे रहा है, लेकिन फरमाया वो दो नूरानी फरिश्ते जिनकी जबान नूरानी है वो उनकी दुआओं को मैं कैसे रद्द कर दूंगा, मंदिर तुझे मैं कैसे रद्द कर दूंगा। तो पता ही चलता है कि जिसको अल्लाह पाक जिक्र की तौफीक दे रहा है, अन्य कलमे उसके जबान से कलमात निकाल रहा है, तो पूरी कायनात को आदमी बैठ के हिला रहा है अपनी तरफ से। इसीलिए कहा जाता है कि जिस इंसान जिक्र से उठ के जाता है तो बख्शा बख्शाया जाता है। पूरी दुनिया के फरिश्तों के लाया होता है। नबी एक फरते हैं रात के हर कलमे के साथ पूरे आसमान के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको माफ कर। आपने कहा हसबन अल्लाह नेम लोग तमाम फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको माफ कर। छोटी छोटी तकलीफ पर रोना चाहिए, परेशान किसी जाकिर को परेशान चाहिए। खुदा की किस्म जाकिर की तो अजीब जिंदगी है, अजीब जिंदगी है। दुआएं दें अल्लाह वालों को जिन्होंने हमें जिक्र करना सिखा दिया। कम एहसान है लोगों को मुझे बताएं, कितनी दुनिया के गुर सीख जाएं, लेकिन जिसने जिक्र पे लगा दिया उसने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही हो गया शख्स। अल्लाह को उस पर इतना बड़ा फजल हो गया, कभी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए अल्लाह के जिक्र के साथ। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा फील है अल्लाह का जिक्र। देखें कितने बड़े मुजरिम हैं, मैं हूं आप तो खैर नहीं होंगे, देखो कितना बड़ा मुजरिम है। उस मुजरिम के लिए जहां जिक्र में बैठे अल्लाह कहता है फिक्र ना कर, तू बेशक कितना बड़ा जुर्म करने वाला है, तू मेरे जिक्र में आए ना, तू छोड़ते तब से फरिश्ते इस्तगफार करेंगे सारे समय, वो कहेंगे अल्लाह इसको माफ कर। तो फिर मैं उनको कैसे इनकार कर दूंगा कि उनकी दुआओं को ना सुनूं, जो इतनी मिलियन और मिलियन फरिश्ते हर आसमान से उस आदमी की तरफ मुतवज्जे हैं और कह रहे हैं इसको माफ फरमा दें। तो मेरे भाई ये मजलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाबरकत मजलिस है, कितने थोड़े लोग इसमें हैं आप ये देखें। यहाँ तो इतना होना चाहिए था मजमा कि चलो भाई आज बख्शिश हो रही है, हमने सुबह शाम तक बहुत गुनाह है, क्या पता सुबह वक्त काल आ जाए हमारी और हम फारिग हो जाएं। चलो जो आज तब तक हमने गुनाह किए हैं अल्लाह ने एक मजलिस कायम कर दी है वहाँ, तो चलो भाई गुनाह ही साफ कराएं अपने, और क्या फ़र्क पड़ेगा, हम गुनाह साफ होंगे नहीं होंगे, हदीस और सब कुछ सुना है मैंने। तो कितनी बड़ी मस्जिद है, इसमें तो आदमी खींच खींच के लाए लोगों को, अल्लाह के बंदो चले अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र की मस्जिद में जाओ, ये अल्लाह की तरफ से ये एक इतना बड़ा रहमत का समुद्र कायम हो गया है कि जिसमें जाते ही इंसान झूल जाता है, उसकी मगफरत हो जाती है। आप इंसान महसूस ना करे तो, लेकिन क्या है कि कुरान और हदीस की बातों पर यकीन करो, अल्लाह की बातों पर यकीन करो कि ऐसा कितना बड़ा अल्लाह ताला का फजल इनाम इंसान पर हो जाता है। इंसान आता कैसे है और जाता कैसे, धुला धुलाया चला जाता है। अब आप जिक्र करेंगे अल्लाह फौज पूरे फरिश्ते आपके एक एक नाम लिखेंगे, अल्लाह इसको माफ कर, अल्लाह इसको माफ कर, अल्लाह इसको माफ कर। हर तरफ नारे पढ़ोगे तो अल्लाह कहेगा जाओ भाई तुमने इतनी दुआएं की हैं, ये जो जा रहा है इसको मैंने बख्श दिया, मुझे याद मैं सबको बुला दूंगा कि इसको इसने कोई गुनाह किया था या इसने कोई बुरी बातें की थी, तो इससे बख्शा जाता है। तो इसकी शुक्र होना चाहिए इंसान जब बाहर निकल रहा हो, पूरी नीयत कर अल्लाह ताला आंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई गुनाह ना करूं, मैं नमाज ना छोड़ू, यानी जो भी नाफरमानी अल्लाह के जुर्म है, जैसे भाई चोरी नहीं करूंगा, मैं दुकान पे से चोरी नहीं करूंगा, मैं फला काम नहीं करूंगा, किसी को मारूं, जो दुनिया के जुर्म होते हैं ना, जब इंसान जेल से निकलता है तो ये समझो कि अल्लाह पाक जब पाक कर रहा हो नूर लेके दिल में जाए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वजूद से लेके किसी भी ऐसी नाफरमानी में नहीं शामिल होऊंगा जिससे तू नाराज हो जाए। तूने तो इतना करम फरमा दिया, मैं बिल्कुल बख्शा चला गया, और जाने के बाद फिर मैं गंद में चला जाऊं, अब किसी को क्या यकीन कि मुझे फिर मस्जिद मिले जिक्र की ना मिले, फिर कहाँ जाके मैं अपने गुनाहों को बख्शाऊंगा। और जब इंसान के गुनाह बख्श जाते हैं अल्लाह पाक राजी हो जाता है, तो फिर कोई कम बात है, फिर उस पर इनाम जारी हो जाते हैं, उसकी रुसत रिज़्क़ में वसत आ जाती है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, उसके फिक्र ख़त्म हो जाते हैं, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, उस पर ना जाने कितने आने वाले अजाब ख़त्म हो जाते हैं, ना जाने कितनी मुसीबतें हैं एक्सीडेंट हैं जो अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर देता है, गोए के करोड़ों किस्म की गारंटियाँ लेके वो बाहर निकलना होता है। रब को जो राजी कर लिया उसने, अपने रब को जो राजी कर लिया, रब राजी हो गया तो तमाम, हमें नहीं पता क्या होने वाला है हमारे साथ, रात को हमारे साथ क्या हो, क्या हादसात हो, क्या होने वाला है, क्यामत आने वाली है, कोई जलजले आने वाले हैं, कुछ होने वाला है, कोई नागवार, कितनी बातें होने वाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता, नोबडी नोज अबाउट, सेकंड में काम होता है, सेकंड में एकदम हाँ ये क्या हुआ फलां हो गया। तो अल्लाह ताला क्या है, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करके जाता है, बख्शा होता है, अल्लाह राजी होता है, तो तमाम ये चीजों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा देता है, उससे दूर फरमा देता है। जब बुलाएं जो मुसीबतें उस पर लटक रही हैं, उन्हें आने के लिए हदीस में आता है, जो लटक रही होती है उनको वहीं रोक दिया जाता है, रुक जाओ आपकी जबान से निकले कलमात उनको रोक लेंगे, उनको नीचे नहीं आने देंगे। एक हादसा आ रहा है हमारे ऊपर से नीचे, बस चार घंटे तीन घंटे के बाद इसमें हादसा आने वाला है, इसमें शामिल हो जाएगा, और वो जो जिक्र करके गया जाकिर है वो हादसा वहीं का वहीं रुक जाएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता, उसका तो मौलिक कर देते हैं अल्लाह पाक। जिक्र करना चाहिए नहीं, शुक्र है ना कि अल्लाह पाक हमें जिक्र की तौफीक दी है, खुद भी जिक्र किया करें, सुबह शाम की जिक्र की मजलिस में बैठा करें और जिक्र सीखें, अपने दिल को जारी करें कि हर वक्त इसी हालत में रहें कि जब दिल जिक्र करता रहे तो फरिश्ते हमारे लिए इस्तगफार करते रहें। اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.